नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। माओवाद रोधी अभियानों में सुरक्षा बलों को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में आंध्र छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा के पास आज हुई मुठभेड़ में शीर्ष कमांडर माडवी हेडमा सहित 6 माओवादी मारे गए। आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हरीश कुमार गुप्ता ने बताया कि माओवादियों की गतिविधियों के बारे में विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने के बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। अभियान के दौरान कोई सुरक्षाकर्मी घायल नहीं हुआ। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदर राज ने हिडमा की मौत को उग्रवाद विरोधी अभियानों में एक बड़ी सफलता बताया। मुठभेड़ स्थल से विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। विजयवाड़ा में 27 संदिग्ध माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अल फलाह समूह से जुड़े 25 से अधिक परिसरों की तलाशी ली। ये तलाशी अभियान वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल, आवास संस्थाओं और धन शोधन की चल रही जांच का हिस्सा है। अल फलाह ट्रस्ट और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की जांच की जा रही है। इस महीने की 10 तारीख को दिल्ली के लाल किला के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय जांच के घेरे में आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल की उपलब्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज के समय में जल चक्र को प्रभावित कर रहा है। नई दिल्ली में 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार और प्रथम जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि देश में सीमित जल संसाधनों को देखते हुए जल का कुशल उपयोग आवश्यक है।
भूजल के स्तर को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 34 लाख से अधिक, आज तो 35 लाख बताया गया है, अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की प्रणालियों को अपनाकर सभी इंडस्ट्रीज तथा अन्य स्टेक होल्डर्स जन संसाधन का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोदाम कार्यों के आधुनिकीकरण, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल पहलों की शुरुआत की। श्री जोशी ने कहा कि इस तरह की पहल सरकार के लॉजिस्टिक लागत को कम करने और टर्नओवर समय को न्यूनतम करने के मिशन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय, सब्सिडी वाला खाद्यान्न सबसे गरीब परिवारों तक अधिक सटीकता, तेजी और सम्मान के साथ पहुंचना सुनिश्चित करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नव निर्वाचित विधायक दल कल पटना में अपने नेता को चुनने के लिए बैठक करेंगे। गठबंधन एनडीए के 5 घटक दलों के 202 विधायक इस बैठक में भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के लिए अब तक 50 करोड़ 97 लाख फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। यह इस चरण में शामिल होने वाले 51 करोड़ मतदाताओं का 98.54% है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक और पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ से अधिक फॉर्म बांटे जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगामी बजट के लिए आज स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। इससे पहले दिन में श्रीमती सीतारामन ने पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ परामर्श किया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज पंजाब में अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया को आतंकवाद के सभी स्वरूपों को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए। रूस के मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में डॉ जयशंकर ने ये बात कही। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहले दौर में उन्होंने चांग कोची और पो ली वेई को हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।